धवला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम श्रुतात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहूणं, त्रिभुवन शिरसे हरये भवभयगभादुनिकदेपणं, सिद्धे जीवठाणस मलिन गुणचूलियम वोच्छम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जीवस्थान नामक है और उसमें अपनी चूली का चल रही है। अब ये छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 168 पर हम आ गए, 168। देखो यहाँ आयु कर्म के आबाधा और निषेध स्थिति की चर्चा चल रही थी अपनी। तो आयु जितनी स्थिति बंधी है उतने ही उसके निषेध होते हैं। आबाधा होती है परंतु वो पूर्व भव में चली जाती है। जिस समय से आयु का बंध हुआ वहां से लेकर मरण तक उसकी आबाधा कहलाएगी। यानी अन्य कर्मों में आबाधा स्थिति से प्रोपोर्शनेट होती है, उस अनुपात यानी प्रोपोर्शन। यानी लंबी स्थिति है तो आबाधा भी ज्यादा होती है। जैसे हमने देखा मिथ्यात्व की 70 कोड़ाकोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है तो 7000 वर्ष की उसकी उत्कृष्ट आबाधा भी होती है। जहाँ ज्ञानावरण आदि की 30 कोड़ाकोड़ी सागर है तो वहाँ 3000 वर्ष की आबाधा है, इस तरह से। परंतु आयु कर्म में क्या हो सकता है, आयु कब बन सकती है? तो कर्म भूमि के मनुष्य को करोड़ पूर्व के त्रिभाग में, त्रिभाग बाकी है तब, यानी आबादा कितनी हो जाएगी, 1/3 पूर्व कोटि। और कोई ऐसा भी जीव होगा तो असंक्षेपाधा काल छोड़कर उसके पहले आयु बांधेगा, यानी जस्ट थोड़ा छोटा अंतर्मूर्त पहले, तो उसकी आबादा होगी अंतर्मूर्त प्रमाण। और ये इतने अंतर्मूर्त प्रमाण पहले आयु बांधी, यानी आबादा अंतर्मूर्त है, फिर भी वो कितनी आयु बांध सकता है? देवायु 33 सागर या नरकायु 33 सागर बांध सकता है, असंक्षेपाधा काल पहले। यानी आयु बंध के बाद मिनिमम पॉसिबल काल बिताकर जो मरण हो सकता है उसको कहेंगे असंक्षेपाधा। यानी इतने छोटे काल में, यानी आबाधा इतनी छोटी है, बस आयु बंधी और आउली के असंख्यातवे भाग काल में मर गया, वो इतना असंख्यातवा भाग है आउली का। कोई प्रपोर्शन नहीं है, केवल हम ऐसा कह सकते कि आयु के निषेक बांधे, यानी आयु जितनी बंधी है और उत्कृष्ट आबाधा सहित बंधी है तो उसको वो कर्म की स्थिति कहलाएगी। जैसे हम बंध के समय से लेकर अंतिम निषेक कब कहेगा उसको कर्म की स्थिति कहेंगे। तो जहाँ उत्कृष्ट आयु बंध की बात आती है तो उत्कृष्ट आबाधा सहित उत्कृष्ट आयु बांधी तब उसको ले लिया जाता है, ऐसी पद्धति है। ये हमने महाबंध में ऐसा देखा था, आपको याद होगा तो। पर यहाँ तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तब इतना गौर नहीं किया था, पर वहां जब हम ऐसा क्यों ऐसा दो तीन बार अपनी चर्चा हुई थी, फिर ख्याल में आया कि उत्कृष्ट आबाधा सहित उसको लेना। तब प्रश्न ये भी उठा था कि उत्कृष्ट आबाधा नहीं होगी तो उत्कृष्ट आयु नहीं बनती है, ऐसा भी हमने चर्चा की थी। परंतु यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उससे कोई कल मैं बताना चाहती हूँ आपको, कल हमने पढ़ा था
तभी।
यानी वो पूर्व कोटि का मनुष्य या तिरंज ही वो आयु बन सकती है उसके उत्कृष्ट। अभी तिरंजों को तो नरकायु करेंगे हम, 167 पेज पर। देखो 23 के अर्थ में भी है और यहाँ पर भी लिखा है। देखो पेज नंबर 166 वहां नीचे से है, वो समाधान है ना। यहाँ पर आयु कर्म की स्थिति में निषेक स्थिति की अपेक्षा न करके आबादा की प्रवृत्ति होती है, यानी कितनी आयु बांधी है उससे कोई मतलब नहीं। इस बात का प्ररूपण करना ही उत्कृष्ट स्थिति प्ररूपणा में आबादा के साथ उत्कृष्ट निषेक स्थिति न कहने का फल है। जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों की आबाधा निषेक स्थिति के परतंत्र उसके अधीन है, उस प्रकार आयु कर्म की आबाधा और निषेक स्थिति परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं है। यानी वो कोई प्रोपोर्शन जरूरी नहीं है कि उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी तो उत्कृष्ट आबाधा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। निषेक स्थिति यानी कितने परमाणु ने, नंबर ऑफ निषेक, जो आयु के जितनी निषेक स्थिति है उतनी ही वो आयु भोगेगा। अन्य कर्मों में भी उदय काल किसको कहते हैं, जो निषेक स्थिति, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर में 7000 वर्ष माइनस करो आबाधा काल के, उतने उसके निषेक स्थिति है। परंतु आयु जितनी बांधी है, 33 सागर की बांधी है, तो 33 सागर के जितने समय उतने उसके निषेक बने, तो निषेक स्थिति भी 33 सागर है। और आबाधा सहित निषेक स्थिति अगर काउंट करना है, बंध के समय से लेकर कब वो अंतिम निषेक खिरेगा, तो उसको कहेंगे वो आबाधा उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसलिए उत्कृष्ट स्थिति प्लस उत्कृष्ट आबाधा वो उत्कृष्ट कर्म स्थिति कहने में आती है, निषेक स्थिति नहीं। ये बात अपनी कल हुई थी। आपने देखा क्या? देखा नहीं। अच्छा हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन असंख्यात देखा ना उसमें। हाँ देखो, मैंने कल पूछा था प्रश्न। चलो अश्विन भाई को एक रोज होमवर्क दे रहे हैं कि उत्कृष्ट देवायु बंधी, यानी कि कब बंधी, 33 सागर की देवायु बंधी, वो कौन बांधता है? मुनिराज बांधते हैं, यानी समय दृष्टि ने बांधी। तो कहते 33 सागर की देवायु बांधता है तो वो तो नियम से नेक्स्ट भाव में मोक्ष में चला जाता है। परंतु हमने क्या पूछा था कि एक बार ये ऐसी उत्कृष्ट आबाधा सहित उत्कृष्ट आयु बांधी, आबाधा भी इसको इंक्लूड करना, और फिर दोबारा इसी बांधनी चाहिए, तो क्या ये संभव है? क्योंकि मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा तो कैसे बांधेगा। परंतु उसमें एक बात है कि किसी मुनिराज ने वो तो उत्कृष्ट आयु बांधी और उन्होंने फिर उसका घातायुष्क हो गया, यानी वो आयु घटा दी, यानी अभी तो नेक्स्ट भाव में मोक्ष जाने का नियम नहीं है। तो फिर क्या करेंगे क्रम से वो बस कभी मिथ्यात्व में भी चले जाएंगे बाद में, और फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद उस कुछ कम रखना, क्योंकि वो 33 सागर उसमें से कम रखना, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन में तो मोक्ष निश्चित है, तो अंतिम मनुष्य का भव और वो 33 सागर बाकी रख के उस भव में उसने फिर ऐसा उत्कृष्ट, यानी 1 करोड़ पूर्व और 1/3 पूर्व कोटि और 33 सागर, इतना अर्धपुद्गल में से कम कर दो, तब उन्होंने फिर दोबारा वो 33 सागर की आयु बांधी। इसको कहते अंतर, एक बार बांधने के पश्चात दोबारा कब। अब हमने अर्धपुद्गल इसलिए कहा कि जो समय दृष्टि है उसके तो उससे अधिक अंतर नहीं होता है, यानी वो मोक्ष निश्चित है उसका, पहले भी जब से समय को प्राप्त किया तब से उसका वो कुछ कम में कर देना माइनस। अब नरकायु के लिए किसी तीर्यंश ने नरकायु बांधी, अब नरकायु बांधने की तो मिथ्या दृष्टि बांध रहा है, सातवें नरक की आयु बांधी, 1/3 पूर्व कोटि बाकी आयु तब उसने बांधी, और बांध कर अभी वो तीर्यंश को ही लेना, चक्रवर्ती तो पूर्वभव में समय दर्शन प्राप्त किया हुआ है, उसको छोड़ दो, अन्य भी मनुष्य बांध सकते हैं। तो वो 33 सागर की आयु भोग कर भी आया मान लेते, यानी आयु बांधने के बाद अंतर चालू हो गया, अब वो कालांतर में फिर तीर्यंश हुआ, फिर अनेक, फिर एक इंद्रिय में चला गया, असंख्यात पुद्गल परावर्तन पार करके जब फिर दोबारा मनुष्य तीर्यंश होगा तब जाके वो सातवें नरक की आयु बंधेगी उसको, तब वो अंतर समाप्त होगा, तो उसको कहेंगे असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये यहाँ का विषय नहीं है, परंतु हम सोच सकते हैं कैसे सोचना उसकी बात बताए। अभी अपना विषय चलेगा आगे, पेज नंबर 168 पर आना। यहाँ कहते हैं 24 नंबर का सूत्र है ना, आ बाधा यानी बाधा रहित। उसके पहले का एक सूत्र पढ़ लो 167 पेज पर। सूत्र केवल देखते, नारकायु और देवायु का उत्कृष्ट आबाधा काल पूर्व कोटि वर्ष का त्रिभाग है। इसका अर्थ समझ में आ गया, क्योंकि आयु का सबसे पहले आयुबद्ध का अवसर कब आता है कर्मभूमि के मनुष्यों में, पूरे आयु के त्रिभाग में बाकी है तब, दो तिहाई बीत गई, वन तिहाई बाकी है तब। तो हम मैक्सिमम आयु कितनी है कर्मभूमि के मनुष्य की, रियंचों की, तो वन थर्ड पूर्व कोटि। तो इसलिए वो कहते हैं पूर्व कोटि वर्ष का त्रिभाग है। और यहाँ कहते हैं आबाधा यानी आबाधा काल में नारकायु और देवायु की निषेक स्थिति बाधा रहित है, यानी निषेक स्थिति उतनी बनी रही थी उसकी। अब इसका अर्थ देखते हैं। पूर्व सूत्रोक्त आबाधा काल के भीतर विवक्षित किसी भी आयु कर्म की निषेक स्थिति में बाधा नहीं होती। शंका, जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों की आबाधा का प्ररूपण करने वाले सूत्र से बाधा का अभाव सिद्ध है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बाधा का अभाव सिद्ध होता है। फिर दूसरी बार आबाधा यह सूत्र किस लिए कहा है, क्योंकि वहां पर भी ज्ञानावरण में भी यही बात बताई थी, आबाधा काल कहते इसलिए वो बाधा रहित है, क्योंकि जो निषेक बने हैं वो ऊपर से ही बने हैं, उस नीचे कोई निषेक ही नहीं बने हैं। तो यहाँ फिर दोबारा क्यों कह दिया ये कहना चाहते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बंधावली व्यतिक्रांत अर्थात जिनका बंध होने पर एक आवली प्रमाण काल व्यतीत हो गया है, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के समय प्रबद्धों के अपकर्षण और परप्रकृति संक्रमण के द्वारा बाधा होती है। देखो इसका अर्थ समझने लायक है। अभी ज्ञानावरण कर्म का बंध हुआ तो ज्ञानावरण का उदय जो सत्ता में पड़े वो चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था। अब बंध के बाद क्या होता है, नियम से किसी भी कर्म में ज्ञानावरण हो दर्शनावरण हो जो मिथ्या तो जो कुछ है, तो हमने जो आबाधा काल का जो समय प्रबद्ध की निषेक रचना बताई थी, यानी इतनी आबाधा है उसके और उसके ऊपर मेरे पीछे हाँ, यानी हम ऐसे उबी डंडी दिखाते हैं ना और ऊपर निषेक दिखाते हैं, ये इस समय बंधे हुए की बात है। उन सत्ता में तो यहाँ ये बंध का समय तो यहाँ सत्ता में तो पड़े हैं ना निषेक, अभी ये निषेक बड़े हो गए इससे सत्ता में तो पड़े हैं। तो एक समय दो समय ऐसे आवली प्रमाण समय बीत गए, बंधने के बाद आवली प्रमाण समय बीत गए, उसको कहेंगे बंधावली। तब क्या होता है, अभी इसका निषेक तो इतना ऊपर पड़ा है, कितना, जो हमने 7000 वर्ष की आबाधा देखी थी उसमें से केवल एक आवली प्रमाण काल बीत गया है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, यानी होता ही है नियम से, हो सकता है होता भी है कि इसमें से अभी ये बंधने के बाद सत्ता में मिल गए, नहीं ये पहले बंधा था आवली काल पहले, अब उन निषेकों में से कुछ परमाणु, अभी थोड़े से परमाणु सभी कहीं से भी आ सकते, ये नीचे आकर उदयावली में जुड़कर उदय में आ सकते हैं। इसको कहेंगे उदीर्णा की अपेक्षा उदय। उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा कितनी, एक आवली। बंधने के बाद एक आवली बीत जाने पर ये सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु, वहां तो अनंत अनंत पड़े हैं, थोड़े परमाणु, इसको कहें अपकर्षण होता है और उदयावली में यह जो सत्ता में, ये जो आवली पहले बंधे थे वो अभी जो सत्ता में ऑलरेडी पूर्व में कभी कभी बंधे हुए पड़े थे, अब उदय के सन्मुख है तो उसमें वो अपकर्षण होकर नीचे आते हैं और उसका उदय हो सकता है। वैसे इसका संक्रमण भी चल रहा है, संक्रमण यानी अन्य प्रकृति रूप होना, वैसा भी उसका उदय हो सकता है। यानी ये उदीर्णा संक्रमण आदि बातें होती ही रहती है, यानी उन परमाणुओं का ऐसा उदय संभव है। आबाधा उदय की अपेक्षा आबाधा, और ये उदीर्णा की अपेक्षा बाधा। पूरा निषेक तो नीचे नहीं आया, उसमें से कुछ परमाणु आ गए। तेने एक अवलिक बीत जाने पर अभी यहाँ जो नया और नया बंद हो रहा है उसके साथ कुछ तो ऊपर भी चले जाएंगे, तो उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है, ये सारी बातें होती रहती। तो कहते उस अपेक्षा वहां बाधा है, परंतु आयु में क्या है, आयु के हमने अभी हम मनुष्य है और देवायु बंदी, तो भले आवली काल बीत गया तो देवायु के कुछ परमाणु अभी मनुष्य रूप से उदय में नहीं आ सकते। उसका उदय तभी होगा जब यहाँ का मरण होकर अभी ये भुज्यमान हमारी मनुष्यायु समाप्त होगी और देवायु का उदय चालू हो जाएगा। तो कहते उसमें ऐसी उदीर्णा होती है, हाँ उसकी तो उदय चालू हो जाएगा, तो आवली के ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु उदय में आएंगे तब उसकी तो उदीर्णा कहलाएगी। जब उदय शुरू होगा तब, उदय के बिना उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा ने ऊपर के निषेकों में से परमाणु जल्दी उदय में आना, उसको उदीर्णा कहेंगे। अपनी लाइन छोड़कर वो उदाहरण देते ना कि लंबी लाइन है टिकट निकालने के लिए, और दूसरे तीसरे नंबर पर आपकी कोई पहचान की है तो उसको पैसा समा दिया, हमारा भी टिकट निकालो, ऐसा होता है ना। जैसे ऊपर के कुछ परमाणु जल्दी उदय में आ सकते हैं, उसकी स्थिति घट जाती, उसको कहेंगे उदीर्णा होना। ख्याल में आई बात? तो अन्य कर्मों में ऐसी उदीर्णा से उसका उदय हो सकता है, यानी वहां बाधा आ सकती है, ये उनका कहना है। आयु में ऐसी बाधा बिल्कुल नहीं, आबाधा तो फिक्स,
संक्रमण भी नहीं होगा ना आयु में,
आयु में संक्रमण नहीं होता। अभी अभी अनुभाग नहीं, निषेक में स्थिति होती है। अभी कितना काल बीत गया वो आबाधा घटते चले जाएगा, जैसे 7000 वर्ष के बाद वो आबाधा काल समाप्त हो उस समय प्रबद्ध का, पर बाय दैट टाइम तो सत्ता में पड़े हुए उदय में आ ही रहे हैं। जिनका जिनका आबाधा काल का निषेकों का पूरा हुआ है वो तो उदय के सन्मुख होकर उदय में आते रहते पूर्व में बंधे हुए। अरे हर बार उस मिथ्या तो में 70 कोड़ा कोड़ी की बात नहीं होती है, कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से, तो उसका उदय भी किसका कब होगा, क्योंकि उस समय कभी बांधा था उसकी स्थिति पूरी हुई तो उसका उदय हो जाएगा। तो सत्ता में तो ऐसे अनेक अलग अलग समयों में बंधे हुए परमाणु पड़े रहते हैं, यानी उसके निषेक पड़े रहते हैं। अब यहाँ फिर पढ़ते हैं, इसका अभी ख्याल आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। समाधान, नहीं क्योंकि जिस प्रकार बंधावली, ये बंध के बाद आवली प्रमाण काल को बंधावली कहते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है अश्विन भाई? अचलावली, क्योंकि उसमें ना संक्रमण होता है ना उदीर्ण होता है, आवली तक कुछ नहीं होता, इसलिए उसका एक नाम है अचलावली, उसी को कहते हैं बंधावली। यानी बंध होने के बाद व्यतिक्रांत, यानी बीत जाने पर, बंधावली व्यतिक्रांत अर्थात जिनका बंद होने पर, यानी उस पर्टिकुलर समय प्रबद्ध की बात चल रही है, जिनका बंद होने पर एक आवली प्रमाण काल व्यतीत हो गया है, ऐसे ज्ञानावरणादि, यानी अन्य 7 कर्मों की बात है यहाँ पर, कर्मों के समय प्रबद्धों के अपकर्षण और परप्रकृति संक्रमण के द्वारा बाधा होती है। परप्रकृति के संक्रमण द्वारा, यानी वो तो ज्ञानावरण के 5 है जो आपस में संक्रमित हो जाएंगे, मति ज्ञानावरण है वो अन्य ज्ञानावरण रूप होकर फिर उसका उदय भी हो जाएगा इस तरह से, उसके द्वारा बाधा होती है। उस प्रकार बाधा होती है ना, वो निषेक अन्य रूप से हो जाते हैं, है ना। उस प्रकार आयु कर्म के आबाधा काल के पूर्ण होने तक अपकर्षण और पर प्रकृति संक्रमण आदि के द्वारा बाधा का अभाव है, अर्थात आगामी भव संबंधी आयु कर्म की निषेक स्थिति में कोई व्याघात नहीं होता। व्याघात यानी उसकी कुछ निषेक स्थिति घट गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बात के प्ररूपण करने के लिए दूसरी बार आबाधा इस सूत्र का निर्देश किया है, यानी उतने काल पहले तो उसका उदय ही नहीं आ सकता। आप कहेंगे वो घातायुष्क वगैरह होती है, उसमें क्या है निषेक जितने बने हैं मान लेते हैं ना, 10 सागर के बने हैं और आयु घटकर 7 सागर की रहेगी, ऐसा हो सकता है, परंतु आबाधा काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ख्याल में आई बात हो, आबाधा में कोई परिवर्तन, वहां कोई उदय नहीं है कुछ अन्य, न पर प्रकृति रूप हो सकते है न जल्दी उदय में आ सकते अपकर्षण के द्वारा। बढ़ेंगे आगे।
व्याघात
यानी घात हो जाना, नष्ट हो जाना।
वो जब भी आयु का बंद होगा तभी घात होगा कि
कभी होता नहीं है ना, ये कह रहे
नहीं नहीं
व्याघात क्यों कह रहे आप, व्याघात होता ही नहीं है।
नहीं घातायुष जो जीव होते हैं,
घातायुष्क को कहेंगे, घातायुष्क बात अलग है, व्याघात बात अलग है। घातायुष्क का अर्थ क्या है, किसी ने अधिक आयु बांधी, जैसे श्रेणिक राजा ने 33 सागर के नरकायु बांधी थी, जो मिथ्या दृष्टि था, मुनि पर उपसर्ग किया था, बाद में परिणाम सुधर गए, समय दृष्टि हुई, क्षायिक समय दृष्टि हुई, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे, तो उन परिणामों के कारण बंधी हुई आयु कट गई।
नहीं वो कटौती होती है, वो जब भी नई दूसरी बार आयु बांधेंगे तभी कटौती होगी के
अभी अभी आप ही उत्तर देंगे। श्रेणिक राजा ने दूसरी बार आयु बांधी तब उनकी कटौती हुई क्या, उन्होंने नरकायु बांधी समय दर्शन होने पर, क्या उन्होंने नरकायु बांधी समय दर्शन होने पर? घातायुष कटौती होने के लिए आयु बंधक का नियम नहीं है, परंतु बढ़ोतरी होने के लिए नियम है। हो सकता है किसी ने देवायु बांधी है, एक पल्ले की बांधी है, और उसके फिर उसने भी मिथ्यात्व अवस्था में बांधी होगी और फिर उसने समय तो प्राप्ति और भी कुछ हो गया, तो उसकी बढ़कर 2-4 सागर की हो गई, तो ये नए बंध की वहाँ अपेक्षा थी, उत्कर्षण के लिए नया बंध होना चाहिए, घातायुष्क के लिए नहीं। इसी से सिद्ध होता है श्रेणिक राजा की, क्योंकि देवों में तो हमें ऐसा विचार आ सकता है कि हाँ क्या हो गया, फिर दोबारा आयु बांधी थी क्या क्या, घातायुष्क के लिए नहीं, हमेशा यहाँ पर भी सामान्य से जो अभी हमने तो ये उदीरणा की बात की, अब वहां और नया बंध होता है तो ये परमाणु ऊपर भी चढ़ सकते हैं, तो कब चढ़ेंगे, नया बंध के साथ चढ़ेंगे, ऐसे ही ऊपर नहीं जाते, यानी उस पर्टिकुलर प्रकृति का बंध होता है तो ही उसका उत्कर्षण होगा। और उदीरणा के लिए उदय का नियम है, उदय हो तो उसका उदीर्ण होगी। तो आगामी भव संबंधी आयु कर्म की निषेक स्थिति में कोई व्याघात नहीं होता, कब, आबाधा काल में, ये बता रहे। इस बात के प्रारूपण करने के लिए दूसरी बार आबाधा इस सूत्र का निर्देश किया है। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। कम्मठिदि कम्मनिसेओ, नारकायु और देवायु की कर्म स्थिति प्रमाण उन कर्मों का कर्म निषेक होता है, जितनी कर्म स्थिति बंधी उतने ही उसके निषेक बनते हैं। अन्य कर्मों में क्या देखा था, कर्म स्थिति में से आबाधा को माइनस करो उतने कर्म निषेक होते हैं, आयु में जितनी कर्म स्थिति उतने ही कर्म निषेक होते हैं, ये डिफरेंस है। यानी अन्य 7 कर्मों में आबाधा काल प्लस उसको उदय काल भी कहते हैं, निषेक स्थिति कहो या उदय काल इज इक्वल टू पूरी कर्म स्थिति, और आयु कर्म में जितना आयु बांधी है उतने उसके निषेक बनते हैं। हाँ नहीं के बराबर है, क्योंकि इस भव में बीत जाता है, आबाधा कहेंगे उसको, पर वो कितना कहेंगे, जब से आयु का बंध हुआ है तब से मरण तक, यानी हमने देवायु बांधी है तो हमारी जितनी रिमेनिंग मनुष्य आयु है वो उतना आबाधा है, उतनी उसकी आबाधा है। देखो, नारकायु देवायु की कर्म स्थिति प्रमाण उन कर्मों का कर्म निषेक होता है। शंका, यहाँ पर आबाधा काल से रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मों की निषेक स्थिति है, इस प्रकार प्ररूपण किस लिए नहीं किया, उसका समाधान नहीं, क्योंकि दूसरी बार आबाधा इस सूत्र के निर्देश द्वारा आबाधा काल से रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मों की निषेक स्थिति होती है, यह बात सिद्ध हो जाती है। यानी ये आबाधा रहित यानी जो बांधी हुई आयु उसमें से नहीं माने माइनस करना है, परंतु आबाधा से रहित ही जितनी है जितनी बंधी उतनी रहेगी। और यदि वैसा न माना जाए तो दूसरी बार आबाधा इस सूत्र के निर्देश की उपपत्ति बन नहीं सकती। यानी जो कर्म आयु जितना बंध है वो तो आबाधा से रही थी बंधी और उतनी उसकी निषेक स्थिति होती है। अब 26 नंबर का सूत्र, देवायु और नरकायु की बात उन्होंने बताई। अब तीर्यंचायु और मनुष्यायु की बात बताएंगे। उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है वो बता रहे अभी। तिरिखाऊ मनुष्याओ सौकसो ठिलीबंधो तिन्नी पलिदो व माणे। तो ये तीन पल्ले की स्थिति कौन सा मनुष्य बांधता है सोनी में आप बताओ। कौन से मनुष्य तीर्यंच तीन पल्ले ने भोग भूमि। हाँ तो भोग भूमि के मनुष्यायु कौन बांधेगा, तीर्यंच बांधेंगे, मनुष्य बांधेंगे, देव बांधेंगे कि नारकी बांधेंगे, ये हमारा प्रश्न है। हाँ नए लोग उत्तर देंगे। हाँ तीर्यंच बांधेंगे ही। हाँ क्यों बांधेंगे। अच्छा कौन से तीर्यंच बांधेंगे, भोग भूमि के ही बांधेंगे, भोग भूमि के आयु के कर्म भूमि के बांधेंगे, कर्म भूमि, क्योंकि भोग भूमि के देवायु ही को बंद करता है। भोग भूमि के मनुष्य तीर्यंच देवायु का ही बंद करेंगे और देव में चले जाएंगे। तो वहां जाने वाले वहां की आयु बांधने वाले कौन है, कर्म भूमि के मनुष्य और तीर्यंच। सम्य दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बोलोगे, सम्य दृष्टि, समय दृष्टि को देवायु बनती है मनुष्यों को तीर्यंचों को, मिथ्या दृष्टि ही भोग भूमि की आयु बांध सकते हैं। बाद में समय तो प्राप्त कर सकते हैं, क्षयिक होकर वहां जा सकते हैं। भोग भूमि की मनुष्यायु तीर्यंच आयु किसके बंधेगी, मिथ्या दृष्टि, कौन कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य तीर्यंच। वो फिर आता है उसके कारणों में चर्चा करते हैं, दान के वगैरह, अनुबोधना की या दान दिया वगैरह वगैरह, उसकी चर्चा अपने ही नहीं करनी। कौन बांधता है, मिथ्या तो सहित जो यहाँ मनुष्य तीर्यंच है वो तीन पल्ले की आयु बांध सकता है। हमारी तीन पल्ले की बात करना यहाँ पर, वो उत्कृष्ट हो मध्यम हो या जघन्य हो, उत्तम मध्यम जघन्य, वो बांधने वाले कौन है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य तीर्यंच। यहाँ तक ख्याल में आई बात, क्योंकि देव तो जाते नहीं भोग भूमि में, भोग भूमि वाले देव में जाते हैं सारे। ऐसा नियम जब पढ़ेंगे, देखो ऊपर हमने सूत्र पढ़ा ना 26, उसका नीचे हिंदी में देखते अर्थ, तीर्यक आयु और मनुष्यायु, ये तीर्यक आयु यानी तीर्यंच की आयु, तीर्यक आयु और मनुष्यायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध तीन पल्लोपम है। यानी कोई इतनी उत्कृष्ट स्थिति बांध सकता है, यह भी निषेक स्थिति ही निर्दिष्ट की है। आयु में निषेक स्थिति ही होती है, जितनी कर्म स्थिति है वो निषेक स्थिति ही होती है, क्योंकि आबाधा उसमें से माइनस है, उसमें से नहीं कम करना। आबाधा तो पूर्व भाव में चली जाती है और जितनी बांधी आयु उतनी वहां भोगेगा, क्योंकि तीर्यंच और मनुष्यों में तीन पल्योपम मात्र औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। ये कहाँ की है, तो उत्तम भोग भूमि की। शंका, आबाधा के साथ निषेकों की उत्कृष्ट स्थिति किस लिए नहीं प्ररूपण की गई, जैसे वहां पर भी पूछा था देवायु के बारे में। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ निषेक काल यानी जितने निषेक बनेंगे, जो कितने बनेंगे, जितने आयु बांधी है, तीन पल्ले प्रमाण निषेक बनेंगे, निषेक काल और आबाधा काल परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं होते। यही बात कल भी बताई थी उन्होंने, यानी इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द स्थिति। यानी कब बांधी, क्या है, तो ऐसी बातें। कोई पूर्व कोटि का भी मनुष्य बांधता है वंथर पूर्व कोटि पहले, और कोई हमारे यहाँ का भी बांध सकता है कि नहीं, यहाँ से मरकर भोग भूमि में कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता, जा सकता है। तो 100 साल की आयु वाला तो उसके वंथर में बांधेगा, या ऐसा भी हो सकता है ना अंतर्मूर्त पहले बांधेगा लास्ट में मरण के पहले, यही तो बता रहे हैं ना। अरे देवायु बन सकते हैं तो असंक्षेपादा यहाँ पर भी हो सकेगा। ये क्या जरूरी है कि मिथ्यात्व के साथ नहीं जाते। तीन पल्ले की हो, सारे समय दृष्टि नहीं है वहाँ पर जाने वाले, आपकी भूल क्या हो रही है, गड़बड़ी क्या हो रही है? सम्यक्त्व के साथ जाने वाले की आप सोच रहे हैं। अरे मिथ्या दृष्टि ने आयु बांधी तो मिथ्यात्व के साथ जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ, उसको अगर सम्यक्त्व लेकर जाना है तो उसके क्षय की कंडीशन है। तो यथायोग्य जब उसने आयु बांधी उसके बाद सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, फिर क्षय होगा, वो सब प्रोसेस आ जाएगा। देखो सम्यक्त्व से बंध होता ही नहीं है, सम्यक्त्व से बंध नहीं होता, वो तो होता है तो पुण्य परिणाम से बंध होने हो रहा है। मिथ्या दृष्टि को भी देवायु बनती है तो उसके विशिष्ट परिणामों में से बंध हो रहा है। समय दृष्टि के भी बंध देवायु का बंध होता है, समय दृष्टि के भी परिणाम तो है ना, अभी चौथे गुणस्थान वाले के तीन कषाय अभी बाकी है, मुनिराजों के भी संज्वलन बाकी है। हाँ ये है कि ऊपर के जो देवों की जो आयु है अनुदिश अनुत्तर, वहां तो मुनिराजों की ही बंधेगी, पर वो सम्यक्त्व के कारण बंधी ऐसा नहीं हम कहेंगे। सम्यक दृष्टि के बंधना अलग बात है और सम्यक्त्व के कारण बंध कहना अलग बात है। है ना समय दृष्टि, पर उनके वो जो उनके कषाय है 28 मूलगुण पालन कर रहे हैं और वहां की जो उनकी शुक्ल लिशा के परिणाम में जो शुभ परिणाम है उसके कारण उनको देवायु बंधी है। वीतरागता के कारण बंधन नहीं हुआ है ये कहना चाहते हैं। सम्यक्त्व और वीतरागता के कारण बंधन नहीं हो रहा है, सम्यक्त्व के साथ जो पुण्य पड़ा है उससे बंध हो रहा है, ये बराबर नक्की करना है। जैसे निर्जरा होती है तो वो तो हम कहेंगे वो वितराग परिणाम होंगे, वो पुण्य के परिणाम से निर्जरा नहीं हो रही है। हाँ पुण्य के परिणाम है, वहां वितरागता भी है और निर्जरा उसके कारण हो रही है और वहां के पुण्य परिणाम के कारण बंद हो रहा है। जैसे हम कहें महाव्रती, महाव्रती है मुनिराज है, तो महाव्रत के जो परिणाम है वो तो शुभ रह गए, उससे बंद हो रहा है, उससे निर्जरा नहीं होती है, ये नक्की करना है। दोनों है ना एट ए टाइम दोनों चल रहे, तो उसमें से बंध का कारण कौन है और मुक्ति का निर्जरा का कारण कौन है हमको निश्चित करना है, ये मान्यता में नक्की करना है। हाँ पंचम काल के जो उत्तम भोग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? हाँ मिथ्या दृष्टि जा सकता है ना, ऐसा कहीं नहीं कि पंचम काल का नहीं जाता, ऐसा कहीं नहीं, औपचारिक नहीं करता, यानी सम्यक तो लेकर नहीं जाएगा, मिथ्यात्व के साथ तो जा ही सकता है। हाँ अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे पेज नंबर 169 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, फिर पढ़ती हूँ समाधान। यहाँ निषेक काल और आबादा काल परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं होते, यानी वो जितनी आयु बांधी उतनी प्रोपोर्शनेट आबादा नहीं है, यह जतलाने के लिए उस प्रकार से निर्देश किया गया है, अर्थात आबाधा के साथ निषेकों की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई गई है, यानी वंतर पूर्व कोटि बांधेगा तो ही वित बांधेगा ऐसा कुछ नहीं है। इस उपर्युक्त यानी ऊपर में बताए हुए कथन का भाव यह है, उत्कृष्ट आबाधा के साथ जघन्य निषेक स्थिति को आदि करके, यानी जघन्य निषेक स्थिति यानी मिनिमम आयु बांधी, तिर्यंच आयु और मनुष्य मिनिमम बांधी, किस आबादा के साथ? वंतर पूर्व कोटि के साथ, यह भी हो सकता है आदि करके, यानी वहां से लेकर उत्कृष्ट निषेक स्थिति तक जितनी निषेक स्थितियां हैं वे सब बनती है। यानी उत्कृष्ट आबादा ली, पहले क्या लिया? वंतर पूर्व कोटि की आबादा ली और उसमें जघन्य निषेक स्थिति यानी मिनिमम आयु बनती है। मिनिमम आयु कितनी बंधेगी? तिर्यंच आयु मनुष्य आयु की, तो अलब्धि अपर्याप्त की अंतर्मूर्त जो जघन्य से है वहां से लेकर तीन पल्ले तक की कुछ भी आयु वन थर्ड पूर्व कोटि पहले बन सकती है, ये कहना है। इसी प्रकार अभी उल्टा बताएंगे, वहां उत्कृष्ट आबाधा ली, अभी उत्कृष्ट आबादा से एक कम, एक समय कम, दो समय कम, तीन समय कम, ऐसे करते 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 मिनिमम आबादा रखेंगे। इसी प्रकार एक समय कम, दो समय कम इत्यादि रूप से उत्तरोत्तर एक एक समय कम करते हुए असंक्षेपाधा काल तक उत्कृष्ट आबाधा आदि की प्ररूपणा करनी चाहिए। यानी जैसे वहां आबाधा उत्कृष्ट रखी और जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक का बंध बताया। अब कहेंगे आबाधा एक समय कम करो, दो समय कम करो, और उसमें भी सारे आयु कर्म के जो जघन्य से उत्कृष्ट तक के भेद करो, यानी किसी भी आबाधा के साथ कौन सी भी आयु बन सकती है, ये इसका अर्थ हुआ। बताया था ना, ये तीर्यं चायु के लिए बताया, नहीं तो कोई कहेंगे कि देवायु नरकायु के लिए तो होता है, परंतु ये मनुष्य तीर्यं चायु के लिए नहीं होगा तो कहते ऐसा नहीं है। हाँ चार, यही बात है। शंका, आयु कर्म की आबाधा पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक क्यों नहीं होती? समाधान, कहते हैं न तो अनेक सागरोपमों की आयु स्थिति वाले देव और नारकियों में पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबाधा होती है। यानी देव और नारकियों में तो मैक्सिमम आबाधा कितनी हो सकती है? तो 6 महीने। आयु कर्म कब बंधना चालू हो जाता है? उनके 6 महीने पहले। वहां बंधेगा ऐसे कोई जरूरत नहीं है, अगर वहां नहीं बंधेगा तो 6 महीने का त्रिभाग, यानी जब आयु 2 महीने शेष रही तब बंधेगी, 2 महीने यानी 60 दिन या 20 दिन पहले बंधेगी। इस तरह से वन थर्ड करते जाओ, उनके भी वो 8 वर्ष काल होते हैं। तो कहते हैं यानी अनेक सागरों की आयु है, इसलिए मान लेते ना अभी हिसाब के लिए 9 सागर की आयु है, तो 1/3 यानी 3 सागर पहले क्या उनका आयु का बंध होगा? तो नहीं, 6 महीने पहले ही होगा। ये कर्मभूमि के मनुष्यों में ही त्रिभाग में आयु बनती है। उसमें 6 महीने पहले, उसमें 2 उपदेश आते हैं, 6 महीने या 9 महीने, 2 उपदेश आते हैं 6 महीने पहले। ये सामान्य से देखो ना, असंख्यात वर्ष की आयु वालों में 6 महीने पहले ही नया आयु का बंध होता है, ये नियम है। कर्म भूमि के मनुष्य तीर्यंचों में आयु का त्रिभाग करना। देखो फिर से पढ़ते इसको, न तो अनेक सागरोपमों की आयु स्थिति वाले देव और नारकियों में पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबाधा होती है, क्योंकि उनकी भुज्यमान आयु के, भुज्यमान यानी जो आयु भोग रहे, उनके अधिक से अधिक 6 महीना अवशेष रहने पर तथा कम से कम असंक्षेपाधा काल के अवशेष रहने पर, यानी ऐसा नहीं कि असंक्षेपाधा काल यही हमारे लिए होता है, उनके लिए भी जो मरण के जस्ट पहले आयु बंधेगी तो उसको भी असंक्षेपाधा काल वहां पर भी होगा। कहीं असंक्षेपाधा कहा, कहीं असंक्षेपाधा कहा, असंक्षेप ऐसा होता है। आगामी भव संबंधी आयु को बांधने वाले उन देव और नारक, देव एर हुआ और देव और नारकियों के पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबाधा का होना असंभव है। न तीर्यंच और मनुष्यों में भी इससे अधिक आबाधा संभव है। न लिखा है ना पहले? नहीं नहीं, क्योंकि उनकी भुज्यमान आयु के शेष अधिक से अधिक 6 मास रहने पर आगामी आयु में बांधने वाले उन दे, क्या उसमें क्या है? असंक्षेपाधा काल के अवशेष रहने पर, अवशेष रहने पर आयु का बंध हुआ, बंध होकर समाप्त हुआ। एक कहने की पद्धति, यानी आयु बांध के जब समाप्त हुई उसके बाद असंक्षेपाधा काल बाकी रहा, इसको कहेंगे असंक्षेपाधा काल बाकी रहने पर आयु बांधे। आयु तो अंतर्मूर्त प्रमाण काल में बनती है और उसके बाद असंक्षेपाधा काल बिताकर फिर वो मरता है। अब कहते हैं न तीर्यंच और मनुष्यों में भी इससे अधिक आबाधा संभव है, क्योंकि उनमें पूर्व कोटि से अधिक भव स्थिति का अभाव है। ये किसमें? कर्म भूमि के। शोभा का कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रश्न फिर पूछना।
प्रश्न ये था कि अभी आखिर में जो आप जो समझा रहे थे ना, वो जरा फिर से समझाना।
हाँ देखो, और संक्षेपाध्याय किसको कहते हैं? देखो ये नियम है, फिर से असंक्षेपाध्याय अध्याय ने काल, असंक्षेपण अभी उससे छोटा काल नहीं। ये नियम है कि आयु का बंध अंतर्मूर्तक होता है, और आयु का बंध समाप्त होने पर है, आयु बांधकर काल समाप्त हुआ तो इमीडिएट दूसरे तीसरे चौथे समय में मरण नहीं हो सकता। तो मिनिमम आवलिका असंख्यात भाग काल तो बिताता ही जी, और उसके बाद ही मरण होता है। ये जो मिनिमम पॉसिबल काल आयु बंद कर समाप्त होने के बाद, वो असंक्षेपाध्याय काल कहते हैं उसको। आयु का बंध उससे पूर्व होकर ये असंक्षेपाध्याय काल में विश्रमण करके फिर मरण होता है। तो यहाँ जो लिखा था तीसरी लाइन में कि कम से कम असंक्षेपाध्याय काल के अवशेष रहने पर आयु का आगामी भव संबंधी आयु को बांधने वाले, यानी असंक्षेपाध्याय काल बाकी है तब आयु का बंधना शुरू नहीं हुआ, उसके पहले बांध कर समाप्त हुए, यानी ये कहा लिखा तो ऐसा है तब आयु को बांधने वाले, उसका अर्थ ऐसा समझना तब आयु बांध कर समाप्त हुई है, बाद में असंक्षेपाध्याय काल बिता कर फिर मरण होता है। यानी देव और नारकियों में वो मनुष्यायु और तीर्यंचायु बांधते हैं, तो उनके लिए देव और नारकियों में मैक्सिमम आबाधा कितनी होगी? 6 महीना, और मिनिमम आबाधा असंक्षेपाध्याय काल, ये उसका अर्थ होता है। छह महीना या 2 महीना या 20 दिन इस तरह से, या मिनिमम वो असंक्षेपाध्याय काल। हाँ, इस तरह से ये असंक्षेपाध्याय की बात कर दी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब वो आपके वो स्पीकर के सामने रखेंगे तो सुनाई देगी। हाँ, अभी फिर शंका पूछते हैं। भोग भूमियों में असंख्यात वर्ष की आयु वाले तीर्यंच और मनुष्य होते हैं, फिर उनके पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबाधा का होना संभव क्यों नहीं है? तीन पल्ले हैं तो उसका 1/3 करो तो 1 पल्ले कहो ना उनकी आबाधा, ये उसका शंकाकार का कहना है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उनके यानी भोग भूमि वाले उनके देव और एयर हो गया, जिसे ऊपर भी एयर हुआ था ना, यहाँ पर भी एयर हुआ है। तो कहते उनके देव और नारकियों के समान भुज्यमान आयु के 6 मास से अधिक होने पर भव संबंधी आयु के बंध का अभाव है, यानी उनके भी अर्लीस्ट का बंध सकती 6 महीना बाकी है तब। अतएव पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबाधा का होना संभव नहीं है, यानी मैक्सिमम आबाधा कितनी होती है पूर्व कोटि का त्रिभाग, किसमें? मनुष्य और तीर्यंचों में, और वो कहाँ के है? तो कर्मभूमि के है। यहाँ तक बात ख्याल में? तथा नीचे का पैराग्राफ, संख्यात वर्ष की आयु वाले भी तीर्यंच और मनुष्य कदली घात से अथवा अधस्थिति के गलन से, अभी इसका अर्थ बाद में बताऊंगी, अर्थात बिना किसी व्याघात के, व्याघात नहीं वो व्याघात चाहिए, व्याघात यानी घात होना, बिना किसी व्याघात के समय समय प्रति एक एक निषेक के खिरने से जब तक भुज्य और अवभुक्त आयु स्थिति में भुक्त आयु स्थिति के अर्ध प्रमाण से अथवा उससे हीन प्रमाण से भुज्यमान आयु को नहीं कर देते हैं, तब तक परभव संबंधी आयु को नहीं बांधते हैं, क्योंकि यह नियम पारिणामिक है। अभी इसका पूरे का अर्थ समझना चाहिए। यहाँ क्या कहते हैं? नियम क्या है? 1/3, ये इतनी आयु बांध कर आया है। अब ये इतनी आयु है, ये उसके 3 भाग करते हैं, त्रिभाग। तो इसने इतनी 2/3 आयु भोगी है, बाद में उसका यहाँ आयु का बंध हो सकता है। अब दूसरी क्या बात है, ये है तो संख्यात वर्ष के आयु वाला, उसमें कदली घात से हो सकता है, कदली घात होने के बाद, कदली घात का अर्थ क्या है, अभी उसने इतनी आयु भोग बांध के आया है, यहाँ तक उसने बिताई है आयु, अब यहाँ तो आयु बंध का कोई सवाल नहीं था, फिर भी कदली घात से एक यहाँ के निषेक नीचे आ जाते हैं, अभी यहाँ इतने ही निषेक बाकी है और ये सारे इसमें आकर मिल जाएंगे, यहाँ के जितने बाकी है ना, इतनी तो आयु बीत चुकी है उसके, इतने तो निषेक गल गए थे, अभी ऊपर इतनी सभी आयु बाकी थी, उसके सारे परमाणु इसमें आकर मिले, इन निषेकों में आके मिले, अब जाके उसका आयु का बंध होगा। फिर से इसका अर्थ देखते, कदली घात से अथवा दूसरी पोजीशन क्या है, अथवा अधस्थिति गलन से, यानी कदली घात से क्या हुआ, अभी कम निषेक बाकी है, या हो सकता है इतनी आयु लेकर आया था, इसके एक 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 गल नीचे से गल गए, अधस्थिति गलन से, अधस्थिति यानी नीचे के निषेक गल जाना, यानी उदय में आकर निकल जाना, खिर जाना, अधय यानी नीचे के, स्थिति यानी निषेक, गलना यानी निकल जाना, खिर जाना, तो एक एक, क्योंकि हमारे अभी हमारे कितने निषेक गल गए हैं, जितनी कुछ आयु हम बांध के आए हैं यहाँ पर मनुष्य के, अब हमारे 70 साल के जितने समय उतने निषेक गल गए हैं, है ना, हमारी उतनी आयु हो गई 70 और कुछ, तो उतने निषेक हमारे गल गए, वो अधस्थिति गलन है, क्योंकि जितने हैं तो उतने फिक्स है, उसमें से इतने गल गए हैं, तो अधस्थिति गलन से, अर्थात बिना किसी व्याघात के, उसमें कोई कदली घात वगैरह या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, व्याघात हाँ, यानी नेचुरली जितना एक एक निषेक गल गया है, समय समय प्रति एक एक निषेक के खिरने से, अधस्थिति गलन का ही अर्थ क्या है, एक एक समय में एक एक निषेक गलना, खिरना, जब तक भुज और अवभुक्त आयु स्थिति में, भुज ने भोगी हुई और अभी जो भोगना बाकी है, ये हमारे हमने मान लेते हैं इसे भोगते भोगते, ये भोग चुके हैं और अभी भोगना बाकी है, आयु स्थिति में भुक्त आयु स्थिति के अर्ध प्रमाण से अथवा उससे हीन प्रमाण से भुज्यमान आयु को नहीं कर देते हैं, क्या कहना चाहते हैं, यानी अभी इतनी आयु भोग चुका है, अब ये भोगी हुई आयु के अपना नियम क्या है, 1/3 करना चाहिए, 1/3 में उसका बंध होना चाहिए, हम उसको जरा संख्या में बताएंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा, जिसका 1/3 कर सकते हैं, ऐसा हम लेते हैं 81 वर्ष की आयु लेके आया, अभी मान लेते हैं कि उसका अर्लीस्ट बंध कब होगा, 27 साल बाकी है तब, यानी कितने उसके बीत चुके चौवन साल का हो जाएगा, 54 पूरे करेगा तब उसका आयु का बंध, यहाँ एक अंतर्मुहूर्त में उसका आयु का बंध होगा, अब वो 54 तक नहीं पहुंचा है, अब मान लेते हैं उसके 40 साल पूरे हुए, 40 साल उसकी भोगी हुई आई है, बाकी कितनी है, 41 बाकी है, तो उसको अभी यहाँ आयु का बंध होगा कि नहीं होगा, तो हो सकता है कैसे, अभी उसकी इतना कदली घात ऊपर का होगा कि इससे आधी वो कर देगा, भोगी हुई आयु के अर्ध प्रमाण बाकी रहने चाहिए, 81 का 1/3 होता है, 27 बाकी है, अभी ये भोगी हुई 40 है, अब इसके अर्ध प्रमाण से करो, कदली घात करके और 20 साल के निषेक बाकी रखो, और कदली घात हुआ, कदली घात करके उसने 60 वर्ष की बना दी, अब यहाँ वो आयु का बंध कर सकता है, यानी कदली घात से जरूरी नहीं कि ताबड़तोब मर जाए पर ये होता है, ताबड़तोब उसमें तो कदली घात लगाते, ये हो सकता है, कि उसने वो घात करके अभी कितनी थी उसकी बाकी 41 बाकी थी, उसमें उसने 21 घटाकर 20 साल की रहेगी। अब यहाँ उसको आयु का बंध हो सकता है क्योंकि अभी उसकी जो वर्तमान में अभी कितनी है 40 भोगी और 20 बाकी, अभी 1/3 हुआ ना, ये कहना चाहते हैं। हाँ, यानी कदली घास से इतना कम हो जाता है कि भोगी हुई आयु 2/3 हो जाती है या उससे कम, यानी जरूरी नहीं 20 होना चाहिए। ये उसने एक घंटे की आयु शेष रखी, अभी घंटे की शेष रही हो तो त्रिभाग से ज्यादा, यानी ये 2/3 से ज्यादा हो ही गई ना उसकी 40 वर्ष की। हो सकता है कि 40 वर्ष की आयु बीत गई है और उसने कदली घास से 1 साल की कर दी, यानी वो 2/3 से ज्यादा हो ही गई उसकी, तो अभी वो आयु का बंध कर सकता है। यानी कदली घात होने पर आयु का बंध हो सकता है, पर कदली घात के पहले अगर किसी ने आयु का बंध किया हो, मान लेते हैं वही 81 वाला है, 54 साल के उसने आयु का बंध कर दिया, कितनी भी आयु आगे की बांध ली है, अभी उसकी आबादा ये 27 ईयर्स आबादा नक्की हुई, अभी उसका कदली घात नहीं हो सकता, कदली हाथ नहीं हो सकता। हम देखते हैं ना कितने ऐसे बहुत वृद्ध होते हैं, बहुत कितनी बीमारी है, कोमा है, कुछ है, तो कैसे भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी है, आयु का बंध हुआ होगा तो वो कदली हाथ से मरेंगे भी नहीं, ऐसे नियम है कुछ। पूर्व भोग का नहीं, ये वर्तमान की जो हम भोग रहे हैं उसकी। कदली घात के ऐसे परिणाम में आयु का बंध होता है कि वो कुछ निश्चित है ऐसे, हाँ, वो हम उसमें कारण कुछ भी कह सकते हैं ना, एक्सीडेंट है, विष भक्षण है, वो आयु का ऐसे कुछ बांध के आया है, वो इसलिए उसका निश्चित था। अब उसमें भी कुछ नियम होते हैं, कहीं देव से आया हुआ वगैरह वगैरह, किसको होता है किसको नहीं होता है, नहीं होता। पन कदली घात कब हो सकता है, मान लेते पूर्व कोटि के आयु बांध कर आया है कोई, पर्याप्ति पूरी हुई, अंतर्मुहूर्त बीत गया और यहाँ पर कदली घात करेगा, यानी पूरी पूर्व कोटि की आयु अंतर्मुहूर्त प्रमाण कर देगा, भोगे हुए अंतर्मुहूर्त से आधे प्रमाण कर देगा, हाँ, यही मनुष्य तिर्यंश। अभी आता है ना ऐसे दो दो तीन तीन बार वो कदली घात से बताते, कोई जलचर हो या कोई पूर्व कोटि की, उसने कदली घात किया फिर आगामी पूर्व कोटि की आयु बांध दी तभी, और फिर उसका कदली, ऐसा पहले हमने पढ़ा है बहुत बार, ये पॉसिबल है। वो सारे कदली घात होकर उतने निषेकों में समा जाएंगे अंतर्मूर्त, कुछ भी हो सकता है, समाधि मरण करने वाले भी हो सकते हैं कि मुनिराज है, कोई प्रसंग आया ऐसा उपसर्ग हुआ तो हम कहेंगे ना कदली घात होकर मर गए, परंतु उनके तो विशुद्ध परिणाम में हो, यानी
उनके आयु में का बंध नहीं हुआ होगा ना,
तब बंद हो जाता है ना वहाँ पर,
जो कदली घात समाधि मरण किया,
हाँ, तो आयु का बंध नहीं हुआ था,
नहीं हुआ था ना,
और अभी उनका उपसर्ग काल में कर दिया उन्होंने बंद, और फिर कदली घात से उपसर्ग के काल में उनका मरण हो गया, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि हमने जो पहले देखा था निक्षेपों का प्रकरण, आप याद करो, ज्ञायक शरीर तीन भाग, भूत भविष्य और वर्तमान के, और भूत वाला चुत चावित और त्यक्त, उसमें कदली घात का भी आया था, आपको होगा कदली घात सा इंगिनी मरण का, प्रायोग गमन का वगैरह, उससे क्या अर्थ होता है, वो उनके विशुद्ध के काल में भी हो सकता है ना, यानी कदली घात के काल में वो ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ मान लेते हैं हमारी आपकी, तो उस समय तत्व विचार के विचार करते करते मर सकता है कि नहीं मर सकता, ये जरूरी नहीं कि वो बाहर एक्सीडेंट हुआ, कदली घात हुआ, इसलिए उसको संकलेश में ही मरना पड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो कहे, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर वो कदली घात से मरा ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है उतनी आयु बांध के आया है, ये तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ऐसे अवधि ज्ञानी ने जाना इतनी आयु है और उस जीव का कुछ ऐसे जल्दी हो गया, तो उसमें तो वो समझ सकते, अनुमान लगा सकते, परंतु ये तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हमें मालूम नहीं ना, हम हो सकता है कि उतनी आयु लेकर आया और उसी निमित्त से मरने वाला, ये भी नक्की है, ऐसे निमित्त तो नक्की होते ही है, परंतु हम अंदाजा कब कहते हैं, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, अभी हमारे अरे 80-100 साल तक जिएगा, हाँ 70-80 साल का नहीं, पर अभी कोई ऐसे यंग एज में गया 20-25 साल में, तो हम अनुमान क्या लगाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई अन्य लक्षण नहीं है, इन्हें कोई कारण नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, और ऐसा हो गया तो हम क्या कहते हैं, कदली खांसी वाला। हो सकता है ना, होता ही है, ऐसा नहीं, देखो जैसे उपसर्ग किसी ने किया उनके मरण हुआ, तो उस समय उसके कदलीघात से मरण हो सकता है कि नहीं, अन्य भी है कोई, जैसे अन्य कोई नैसर्गिक आपत्ति आ गई, अन्य भी कुछ हो सकता है ना, ऐसी कोई भयंकर बीमारी आ गई, हिमरेज हुआ, जो कुछ हुआ, यानी कदलीघात क्यों, उसका कारण निमित्त क्या है, तो विषभक्षण हिमरेज ऐसा अलग अलग कारण बताते हैं, वो तो बाह्य कारण है, परंतु कर्मों में क्या हो रहा है, कदलीघात हो रहा है, ये तो क्या हो सकता है ये हम आगम से ही जान सकते हैं, और ये हमारे आपका क्या हो रहा है, क्या किसका क्या होगा, ये हम नहीं समझ सकते, नहीं आगम से ये क्या क्या हो पॉसिबिलिटीज है उसकी चर्चा कर सकते हैं, परंतु कैसे भी हो मरण का समय है, तो उस समय तो जो हमने तत्व ज्ञान जो सीखा है तो उसी के विचार चलते रहेंगे, जिसने उसमें गंभीरता से कहो या सच्चे निर्णय तक पहुंचा है उसको तो उसी के विचार आएंगे, बाह्य में उसकी जो कोई परिस्थिति है उसके अनुसार से उस जीव के परिणामों का अनुमान नहीं लगाना, कोई एक्सीडेंट में मरे या कोई कहते ना अरे वो गादी पर सोते सोते मरा और कोई चटाई पर मरा, हाँ तो उसको पहले नीचे उठाओ फिर मरण तो अच्छा मरण हो ऐसा कहते ना, और उसको मालूम नहीं और जबरदस्ती उसको ऊपर से करते तुमको ये त्याग दिया वो त्याग दिया वो त्याग दिया, यानी उसके परिणाम हो वैसे तो ठीक है, अब त्यागने से भी उसके अगर अंतरंग में स्थिरता के परिणाम हो उस समय वो ज्यादा कार्यकारी है, और वो तब संभव है जब उसने देखो जैसे सुनामी जैसा पूर आ गया तब तैरना कोई सीखेगा कि नहीं सीखेगा, अरे उसमें तो बह जाएगा, तो जिसने पहले तैरना सीखा है वो महापूर में भी बच सकता है, ऐसे जिसने पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है तो मरण का समय है तो उसका मरण का डर नहीं, नहीं हमने तो पढ़ा है ना मरण क्या है, अरे यहाँ अभी है एक समय नेक्स्ट समय में दूसरा भाव चालू हो जाता है, कहीं भटकना नहीं कहाँ रुकना नहीं कहीं कोई बात नहीं, सब ऑटोमेटिक रिजर्वेशन है पूरा, उसमें डरने की बात ही नहीं है, तो अच्छा है ना मौका आया है हमारे, जो क्या होता है हम जो अभ्यास करते हैं परीक्षा के समय में और ज्यादा हम स्फूर्ति आ जाती है हमको, हम कर दिखाने का मौका आ जाता है, ऐसे जो हमने जीवन भर जो तत्व ज्ञान सीखा है मरण हो या भयंकर बीमारी हो या अन्य कोई उपसर्ग हो कुछ भी हो उस समय तो ये तो अपना मौका है ना, जो हमने पढ़ा है उसको तो करने का तो और ज्यादा मौका होता है, हाँ प्रैक्टिकल यानी वो होते ही है, सहज होते हैं, ऐसे जबरदस्ती नहीं करने पड़ते, जिसका अभ्यास नहीं फिर दूसरे लोग उसको उपदेश देते हैं अरे ऐसा नहीं करो, फिर नमोकार मंत्र कहेंगे कुछ, और जिसको अरुचि है तो कहेगा अरे मैं मर नहीं रहा हूँ नमोकार मंत्र अभी नहीं सुनाना, ऐसा कहने वाले हम मिले हमको, अभी मत सुनाओ मैं मर नहीं रहा हूँ, यानी मरते समय ही सुनाओ ऐसा उनका कहने का प्रयोजन, यानी परिणाम नहीं है, और केवल नमोकार मंत्र सुन गया तो उदय में गया ऐसे थोड़ी ही होता है, क्योंकि हमने वो स्टोरी पढ़ी है ना कुत्ते के कान में नमोकार मंत्र, वो अरे उसके परिणाम तब शांति के रहे वो गया होगा, परंतु ऐसे सबका तो केवल नमोकार मंत्र सुना इसलिए नहीं, उस जीव के परिणाम क्या है उस समय उस पर उसका जो कुछ है, हम तो केवल कहां मर के जाएगा उसके लिए व्याकुल होते हैं, अरे एक एक समय का परिणाम है उससे बंध तो हो ही रहा है, हमें तो अपने अबंध स्वरूप का चिंतन करना है, ये तो हम सभी आगमों में यही बात आती है ना, अभी ये तो केवल यहाँ तो हम कर्मों की जो बातें बताए तो हम तो इससे तो जुदे ही है, ये ना क्या करना है, यानी ये क्या है भोगी हुई जो आयु ऑलरेडी है घात करके उसके अर्ध प्रमाण निषेक रह जाए तो आयु का बंध हो सकता है, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि उसके 2/3 से ज्यादा हो गई ना उसकी, अभी हमने क्या किया, लंबी थी 40 वर्ष बीत गए, अब जितने बाकी थी उसमें से उसने 20 साल कर दिए, तो अभी उसका आयु का बंधन हो सकता है कि बात, या उससे हीन कर दी 10 साल की कर दी, हो सकता है 5 मिनट की रखी, ऐसा नहीं, बहुत अभी छोटा बच्चा है, एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कितनी, वो पूरी आयु की उसने 3 घंटे उसकी शेष रही और वहां आयु का बंधन किया उसने, तो हम देखते उसके लिए हम कुछ उपाय करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाता है उसको, कुछ कुछ प्रोसेस है सब, लाइफ सेविंग, 3 घंटे तक बचा, उतनी आयु शेष रही थी, उसने आयु बांध ली थी, अभी आबादा काल उसका उतना है, तो उतना होने पर मृत्यु हो जाती है, अन्य भव उसका चालू हो जाता है, जो आयु बंधी वहां चला जाएगा। यानी ऐसा भी नहीं है कि कोई तत्काल मर जाता है, कोई तत्काल नहीं, उसमें भी जो कुछ असंख्यात समय की बात रह जाती है, और कोई बहुत कोशिश करते हैं, हम देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो बंदूक की गोली 8-8 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं, यानी होता है ना, अभी हमारे कोई यहाँ की किसी की हत्या हुई थी ना, 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, यानी उसने वो कदलीघात करके बंद हुआ, कदलीघात करके 8 दिन की आयु शेष रखी, बीती हुई आयु से वो तो 8 दिन कम रहे, तो उसने आयु का बंद कर दिया, 8 दिन के बाद मरण हो गया। हम बाहर निमित्तों को देखते कि इतने कोशिश की, ये लगाया वो लगाया, हाँ उसमें उसके पीछे का आयु का क्या पोजीशन है उसकी बात चल रही, वो वही है, कोमा है, कोमा लाइफ तो है वहां पर उसकी, आयु बंद कब भी हो सकता है, कदलीघात के बाद ही आयु का बंद होता है, हाँ क्या होगा, अच्छा बुरा क्या है उसमें, परिणाम क्या है, इतने तीव्र संकलेश भी नहीं होगी, तीव्र विशुद्ध भी ज्यादा नहीं होगी, जैसे उसको नहीं, तो जिसको ज्ञान है उसको क्या हो रहा है, ज्ञान यानी जो समझ रहा है, अभी अभी सोचो उसकी बात छोड़ दो, हम आप बैठे हैं, आयु का बंद हो रहा है, सोच समझ कर क्या कर सकते उसमें, कुछ नहीं, हाँ वहां पर भी देखो हर समय उसके मोहराग द्वेष के परिणाम चल ही रहे, हर जीव के जुदे हो गए, अभी कोई सम्यक दृष्टि और कोमा में गया तो उस समय भी उसके, हाँ तो ऐसे जिसके इसके परिणाम जो वहां चल रहे हैं, वो दूसरे के हमारे ख्याल में नहीं आ रहे कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी कुछ क्रियाएं नहीं हो रही बाहर शरीर की जिसको, पर उसके अंदर में तो सब चल रहा है अंदर। अब जैसे एक इंद्रिय जीव है, कोमा जैसी तो स्थिति है, क्या दिख रहा है बाहर झाड़ को, तो वहां उनके हो रहे हैं कि नहीं, मनुष्य आयु बांधकर मनुष्य में भी आ सकता है वो, ऐसे यहाँ इनका भी है, हमें पता नहीं चल रहा है वो क्या हो रहा है, ये पूरा वाक्य फिर पढ़ती हूँ मैं, अभी है ना समय, हाँ नीचे का पैराग्राफ, तथा संख्यात वर्ष की आयु वाले भी तिर्यंच और मनुष्य कदली घात से अथवा अधस्थिति गलन से, अतः अधस्थिति गलन यानी क्या, अर्थात बिना किसी व्याघात के समय समय प्रति एक एक निषेक के खिरने से, जब तक भुज और अवभुक्त आयु स्थिति में, भुज ने भोगी हुई और अवभुक्त ने भी जो भोगना बाकी है उसमें, भुक्त आयु स्थिति के अर्ध प्रमाण से अथवा उससे हीन प्रमाण से भुज्यमान आयु को नहीं कर देते, भुज्यमान यानी जो भोगने योग्य जो अभी है, हमारी भुज्यमान आयु यानी मनुष्य आयु चल रही, भुज आयु यानी हमने जो बीत चुकी हमारी, अभी हमने जो उदाहरण लिया था उसमें भुक्त आयु यानी 40 साल हमने यहाँ बताया ना आपको, तो भुक्त आयु स्थिति के अर्ध प्रमाण से यानी 40 साल उसके ऑलरेडी आयु उसने भोगी, यानी 40 साल का हुआ है, अब उसके जितनी कोई आयु शेष थी वो जब तक वो 20 साल की नहीं कर देता तब तक उसको आयु का बंधन नहीं होगा, अर्ध प्रमाण से अथवा उससे हीन प्रमाण से, ये तो 20 वो तो हम मैक्सिमम की बात के, वो तो घात करके उसको 1 साल की भी बना सकता है, 5 मिनट की भी हो सकती है, अंतर्मुहूर्त में तो उससे भी कम हो सकती है, बुद्धिमान आयु को नहीं कर देते तब तक परभव संबंधी आयु को नहीं बांधते हैं, क्योंकि यह नियम पारिणामिक है, ये बिल्कुल अटल नियम है। इसलिए आयु कर्म की उत्कृष्ट आबाधा पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक नहीं होती, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ये त्रिभाग क्यों नहीं, उससे ज्यादा क्यों नहीं, उसके लिए सभी बातें बताई। अब यहाँ हम कुछ 170 पेज पर फुटनोट में क्या लिखा है उसको जरा देख लेते हैं। एक आंकड़ा किधर है ऊपर? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या आपका?
आयु का बंध 7 में हो सकता है
आपका प्रश्न? इसे कदली घात और आयु का बंध 7 में हो गया। कदली
पूछ रहा
आप पूछने के लिए तो पूछते है ना। कदली घात हो रहा है ना, उसके ऊपर के नीचे कौन से परमाणु नीचे आ रहे हैं, उसके लिए कितना अंतर्मुत लगेगा, यानी उसकी अभी स्थिति घटी नहीं है।
नहीं, इसका कदली घात 2/3 आयु बीतने के पश्चात हो गया, उसने आयु का बंधन नहीं किया। तो तभी कदली घात हो रहा है, तभी आयु का बंधन
हो रहा है का अर्थ क्या?
आयु का निषेक का घात हो रहा है।
हो रहा है, हुआ नहीं है।
नहीं,
हो रहा है ना, उसकी अभी स्थिति उतनी है।
नहीं, बराबर है। मैंने 90 साल के आयु वाले 60 के पश्चात उसका कदली,
यानी आपने ऐसा कहना है आपको कि 90 साल की आयु वाला है 60 साल के, यानी वो 65 साल का है, यानी उसके वो 2/3 उसने वो तो पार किया है और उसका भी कदली घात हो रहा है ना, तो उस वहां उसका आयु का बंध होगा कि नहीं होगा, ये आपका प्रश्न है। कदली घात के काल में हो रहा है कि नहीं, ये आपका प्रश्न है। क्योंकि उसकी जो स्थिति बाकी वो 30 साल की, यानी अभी 25 साल की बाकी है, तो 25 साल की बाकी है तब तो आयु का बंध कर सकता है। अगर कदली घात हो रहा है और उस तो उसकी कितनी आबादा होगी, कदली घात पूरा कैसा होगा फिर उसका?
हाँ, तो नहीं हो
ऐसा विचार कर, नहीं होगा, क्योंकि उसकी जब तक वो स्थिति है तब तक तो उसका आयु का बंध हुआ, तो वो तो वो कदली घात कैसे होगा, वो उसको कदली घात ही नहीं कहेंगे फिर। आबादा तो फिक्स है। हाँ, ये नीचे का पहले जो फुट नोट है ना वहां से देखते हैं हम। ऊपर एक ककड़ा कहाँ लग, बंधा भावा, हाँ नीचे से तीसरी लाइन, परभवी आवस बंधा भावा। अच्छा, वो देवनारकियों के लिए बताया, नीचे देखते हैं। बंधती देवनारय असंख्य तिरिनर, यानी देव नारकी और असंख्यात वर्षायुष्क वाले तीर्यंच और मनुष्य, नर यानी मनुष्य यानी भोगभूमि वाले कब बांधते हैं? 6 शेषाऊ, यानी 6 शेष आयु रहने पर परभवी आऊम परभव की आयु बांधते हैं। शेषा निरुवक्कम तिभाग शेषाऊ, शेष जो है वो त्रिभाग शेष रहने पर आयु का बांधते हैं। निरुवक्कम निरुपक्रम कहते उसको। सोवक्कम आऊआ पुनः शेष तिभागे अहव नवम भागे, और सोपक्रम आयुष वाले उसके शेष त्रिभाग में अथवा नवमे भाग में। सत्तावीस इमे वा अंतमुत्तमे वावी, यानी त्रिभाग शेष रहने पर या नवमा भाग, क्योंकि त्रिभाग का त्रिभाग यानी नवमा भाग, देखो त्रिभाग यानी 27, उसका त्रिभाग यानी 9 साल बाकी रहे, यानी ओरिजिनल का 27वां भाग। वाह कहकर और ऐसे आगे पढ़ना, अंतमुत्तंति में वावी, यानी यह लास्ट में ऐसे 8 बार हो जाएगा, तो अंतर्मुट शेष रहने पर। बृहत संग्रहणी सूत्र में लिखा है, अधट्ठिदि गलनेन, अधट्ठिदि गलनेन ता जम कम्मम जिससे ठिदिये निषित्त मणोकड्डिदम अणुकड्डिदम तिस्से चैव ठिदिये उदये दिस्सयि तम अधानिसेय ठिदि प्रत्ययम्। यानी जो परमाणु जिस निषेक में है वो अपने अपने निषेक जब उदय में आता है तब उसका गलना उसको अधस्थिति गलन कहते हैं। लास्ट में जहां निषेय सर्वेण अवठिदस्य यानी निषेक जिस स्थिति में अवस्थित होते हैं ठिदिखेण उदयम आगच्छन्तस्य यानी तो स्थिति के क्षय से उदय में आने वाले के नाना समय पबद्ध संबद्ध पदेश पुंजस्य अत्थाणुगो पयदववयेसो ति भणिदम होई। अब यह अन्य कर्मों में बात बता रहे हैं कि उसके अलग अलग समयों में बंधे हुए निषेक एक समय में उदय में आते उसकी बात वहां दी, वो बात अलग है। अभी हम ये हो गया पेज नंबर 171 पर आते हैं, नया अभी जो सूत्र है ना उसको पढ़ेंगे 27 नंबर का। पूर्व कोड़ी तिभागो आबाधा, पहले क्या बताई थी उससे कम नहीं होती। उत्कृष्ट स्थिति बंध तीन पल्लोपन होता है ऐसा हमने देखा था, और उसकी उत्कृष्ट आबाधा, हमने तो ये देखा था कि उसके लिए कोई आबाधा का नियम नहीं है, परंतु मैक्सिमम उसके लिए कितनी होती है तो पूर्व कोटि कत्रिभाग। तिर्यकायु और मनुष्यायु का उत्कृष्ट आबाधा काल पूर्व कोटि का त्रिभाग है, वो विभाग दिखता है वो त्रिभाग करना, अनेक आबाधा विकल्पों के संभव होने पर भी। अनेक आबाधा विकल्प है ना, पूर्व कोटि त्रिभाग से लेकर अंतर्मूर्त तक कुछ भी हो सकती है, एक एक समय के डिफरेंस के, ये सारे इतने भेद विभाग उसको विकल्प कहेंगे। संभव होने पर भी, पॉसिबल होने पर भी, यहाँ पूर्व कोटि त्रिभाग मात्र ही आबाधा होती है यह कथन किया गया है, क्योंकि अन्यथा उत्कृष्ट स्थिति बन नहीं सकती। स्थिति यानी हम आयु के बंधने के समय से लेकर वो बंधी हुई स्थिति यानी आबाधा प्लस वो उसको मिलकर स्थिति बताई है। इस बात के बतलाने के लिए इस सूत्र का अवतार हुआ है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। आबाधा जैसे देवों में बताया था वैसे यहाँ पर भी कहते हैं। आबाधा काल में तिर्यकायु और मनुष्यायु की निषेक स्थिति बाधा रहित है, यानी आबाधा काल में उसका उदय वगैरह नहीं होगा अभी यहाँ पर, जो बंधी हुई आयु की बात चल रही है। शंका, तिर्यकायु और मनुष्यायु की उत्कृष्ट आबाधा पूर्व कोटि का त्रिभाग है, इस पूर्वोक्त सूत्र से ही पूर्व कोटि के त्रिभाग में बाधा का अभाव जान लेने पर पुनः आबाधा इस सूत्र किस लिए कहते हैं। ये ऊपर के लाइन में इस के बाद वो एपोस्ट्रोफी है ना, वो नीचे आबाधा के बाद होना चाहिए। हाँ, समाधान नहीं, क्योंकि ये जो देवायु में बताया था देवायु नरकायु वही बात यही बता रहे, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मों की आबाधा के भीतर अपकर्षण उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रमण के द्वारा निषेकों के बाधा होती है, ये क्या बताया था याद है, बंधावली बीत जाने पर उसमें उत्कर्षण भी होता है अपकर्षण भी होता है पर प्रकृति संक्रमण होता है, यानी वो निषेकों में बाधा आ जाती है, उस प्रकार आयु कर्म की बाधा नहीं होती है। यह जतलाने के लिए पूर्व सूत्र द्वारा आबाधा के कहे जाने पर भी पुनः आबाधा का प्ररूपण किया गया है। कम्मठिदि कम्मनिषेगो, तिर्यकायु और मनुष्यायु की कर्म स्थिति प्रमाण ही उनका कर्म निषेक होता है, यह सूत्र सुगम है। ये आयु की बात बताई बीच में उन्होंने, अब आगे कुछ नाम कर्म की कुछ बातें यहां बताएंगे। द्विइंद्रिय तीनिंद्रिय चौरिंद्रिय वामन संठान खिलिय संघड़न सुहुम अपजत साधारण नामानम उक्कसगो ठिलिबंदो अठारस सागरो वम कोड़ा कोड़ियो, क्या कहना चाहते। ये बीच में ही उन्होंने आयु की बात बीच में ही ले ली। अब कहते द्विइंद्रिय जाति तीनिंद्रिय जाति चतुरिंद्रिय जाति वामन संस्थान कीलक सहनन सूक्ष्म नाम अपर्याप्त नाम और साधारण नाम, इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। पहले हमने हुंडक संस्थान और वो संप्राप्त सुपाटी का सहनन लिया था, है ना। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इस सूत्रोक्त उत्कृष्ट स्थिति में सर्व कर्मों के प्रमाण से समान गुणहानि के द्वारा भाग देने पर यहाँ पर की अर्थात उत्कृष्ट कर्म स्थिति की नाना गुणहानि शलाकाएं उत्पन्न होती है। यानी सभी कर्मों में गुणहानि का प्रमाण समान है। जो हमने 8 माना था एक्चुअल में पल्ले का असंख्यात भाग होता है। यहाँ जितनी स्थिति है 18 कोड़ा कोड़ी सागर, उसको उसकी अपनी गुणहानि से भाग देंगे तो नाना गुणहानियां मिलेगी, यानी नंबर ऑफ गुणहानियां। जैसे हमने 48 स्थिति देखी थी उसको 8 से भाग दे था तो 6 गुणहानियां आई थी। तो जितनी स्थिति होगी उस गुणहानि का प्रमाण तो 8 ही है। कहीं स्थिति ज्यादा है कभी कम है तो वहां जो स्थिति कम बनती है। अभी इसकी मैक्सिमम 18 कोड़ा कोड़ी है। ज्ञानावरण आदि की मैक्सिमम 30 कोड़ा कोड़ी थी। मिथ्यात्व की मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी थी। तो हमने मानी हुई तो संख्या वो वहां तो नाना गुणहानियों का प्रमाण 14 था मिथ्यात्व में, ज्ञानावरण आदि में 6 था, 20 कोड़ा कोड़ी होता है वहां तो हमने 4 देखा था। अभी 18 × 36 यानी 3.6 हो गया। यानी वो अंतिम गुणहानि वो कम छोटी हो जाएगी। देखो अभी ऐसा देखते हैं, ये द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति कौन बांधता है? मनुष्य तिर्यंच बांधेंगे। तो मनुष्य तिर्यंच अति संकलेश परिणाम करेंगे तो क्या बांधेंगे? नरगति का बंध करेंगे। तो नरगति के साथ पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधेंगे। ख्याल में आते हैं? तभी दूसरी बात, सूक्ष्म पर्याप्त साधारण नाम कर्म कौन बांधेंगे? मनुष्य तिर्यंच बांधेंगे। कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच बांधेंगे तो वो तो एकेंद्रीय जाति के साथ इसका बंध हो रहा है। हाँ तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि अति संकलेश परिणाम में वो नरक गति बांध रहे, इनको नहीं बांध रहे, इसलिए इसको यहाँ पर ले लिया 18 कोड़ा कोड़ी पर। इतनी बात लेना, थोड़ी मैंने थोड़ा मैं आपको बता रहे। अति संकलेश परिणाम में 6 नंबर का सहनन और वो संस्थान बांधेंगे, यहाँ जरा संकलेश कम है, 18 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा। एकेंद्रीय जाति का उत्कृष्ट बंध देव करेंगे, वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का करें। हाँ, इसलिए यहाँ नहीं लिया। कौन करते? उसके स्वामी जुदे जुदे हैं। मनुष्य अगर एकेंद्रीय का बंध करेंगे सूक्ष्म साधारण के साथ तो मनुष्य तिर्यंच एकेंद्रीय का बंध करेंगे तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं करेंगे। तो देव एकेंद्रीय, क्योंकि देवों के अति संकलेश परिणामों में एकेंद्रीय जाति बंधेगी और वो 20 कोड़ा कोड़ी का बंध कर सकते हैं। देव कौन से? नीचे वाले सौधर्म ईशान अति संकलेश में एकेंद्रीय जाति को बांधेंगे और वो ऊपर के सनत कुमार महेंद्र अति संकलेश में पंचेंद्रीय जाति बांधेंगे। वो एकेंद्रीय बांधते ही नहीं तो उनके अति संकलेश परिणाम में पंचेंद्रीय जाति बांधेंगे। तो जो पीतलेशा वाले देव है वो पंचेंद्रीय जाति का बंध कम करेंगे, एकेंद्रीय का ज्यादा करेंगे। और पद्मलेशा वाले अति संकलेश में पंचेंद्रीय जाति बांधे, वो एकेंद्रीय बांधते ही नहीं। स्वामी कौन है, उसके अति संकलेश में क्या बन सकता है, उसका विचार करके ये बात लेना है। ये मात्र मनुष्यों के ही बंधेगी, मनुष्य तिर्यंचों के, देवों के तो बंधेगी ही नहीं। इसलिए एकेंद्रीय को लिया है 20 कोड़ा कोड़ी सागर में क्योंकि उसका स्वामी जुदा है, और इनको लिया है 18 कोड़ा कोड़ी सागर में। आगे बढ़ते हैं। इस सूत्रोक्त उत्कृष्ट स्थिति ये बताए ना, सर्व कर्मों के प्रमाण के प्रमाण से समान गुणहानि के द्वारा नहीं, सर्व कर्मों के प्रमाण से समान गुणहानि द्वारा, ये जरा उठपुटा, यानी सर्व कर्मों में गुणहानि का प्रमाण सेम है उसके द्वारा भाग देने पर। देखो ये इन्वर्टेड करो, सर्व कर्मों के प्रमाण से समान गुणहानि, ये एक शब्द लेना। मैंने अभी ऐसा पढ़ेंगे, इस सूत्रोक्त उत्कृष्ट स्थिति में कितनी बताई? 18 कोड़ा कोड़ी सागर। अब बाकी भूल जाओ, गुनहानी के द्वारा भाग देने पर। और वो गुनहानी कैसे होती है? सभी कर्मों के लिए समान स्थिति वाली होती है, समान प्रमाण वाली होती है। क्योंकि ऐसा वाक्य पढ़ने जाओ तो कन्फ्यूजन हो रहा है। ऊपर कितनी स्थिति बताई? 18 सागर, 18 कोड़ा कोड़ी सागर, उसको गुनहानी के द्वारा भाग दो तो क्या मिलेगे? नाना गुनहानी मिलेगी। जैसे हमने 48 को 8 से भाग दिया तो 6 मिली थी, ऐसे यहाँ पर करना। देने पर यहाँ पर की अर्थात उक्त कर्म स्थिति की नाना गुनहानी शलाकाएं उत्पन्न हो जाती है। इन नाना गुनहानी शलाकाओं के द्वारा कर्म स्थिति में भाग देने पर एक दुगुण वृद्धि अर्थात गुनहानी आयाम का प्रमाण आ जाता है। यहाँ हानि नहीं कहता, वृद्धि कह दी। उसी को ऊपर से नीचे देखेंगे तो दो गुण वृद्धि कहेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो दो गुण हानि कहेंगे, बात एक ही है। उसी को हम गुणहानि कह रहे हैं। इसे 48 को 8 से भाग देंगे तो 6 आया, 48 को 6 से भाग देंगे तो 8 आएगा, यही कहना है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। 18 वास सदानी आबाधा। पूर्व सूत्र कथित द्विन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियों का उत्कृष्ट आबाधा काल 1800 वर्ष है, यानी 1800, क्योंकि हमने इन प्रोपोर्शन टू कर्म जो स्थिति है 18 कोड़ा कोड़ी सागर तो 1800, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की आबाधा 100 वर्ष होती है। उसे त्रैराशिक क्रम से प्राप्त 18 रूपों से गुणित करने पर 1800 वर्ष प्रमाण आबाधा काल की उत्पत्ति होती है। इस आबाधा के द्वारा कर्म स्थिति में भाग देने पर आबाधा कांडक का प्रमाण उत्पन्न होता है, वो भी हमने हर जगह देखा था। देखो 70 कोड़ा कोड़ी सागर और उसकी आबाधा 1700, 7000 वर्ष ने क्या 1700। 30 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 3000 यानी 3000 वर्ष, तो एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100। आयु में, ये आयु नहीं बात चल रही, अभी द्विन्द्रिय जाति नाम कर्म की बात चल रही, यहाँ नाम कर्म की बात चल रही है। आयु में वो आबाधा इन प्रोपोर्शनेट होती है, इससे कोई नियम नहीं है। वहां पर अन्य कर्मों में नियम है। ये उत्कृष्ट स्थिति बंधे तो उत्कृष्ट आबाधा। संगी पंचेंद्रिय जीव अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंध तो कर सकता है ना, कभी हिम कभी ज्यादा कभी होता है तो अंत कोड़ा कोड़ी तो बंधेगा ही। एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100 वर्ष है, अंत कोड़ा कोड़ी के तो अंतर्मूर्त भी है उसके। हाँ। तो ये लोग पूछते हैं ना, इस कर्म अभी बांधे हुए इसी भव में उदय में आएगा कि नहीं? आ सकता है ना, उसमें क्या है। और बाद अवली के बाद तो उदयनाथ से तो उदय होता ही है, और पहले सत्ता में पड़ा है ना, वहाँ वो भी तो उदय में आ ही रहा है। ये 1800 की बात होगी, अंबाधा कांडक होता है। 32 नंबर आबाधुनिया कम्मठिदि कम्मनिसेओ। उक्त कर्मों के आबाधा काल से हीन कर्म स्थिति प्रमाण उन कर्मों का कर्म निषेक होता है, यानी निषेक रचना होती है। आबाधा 1800 वर्ष छोड़कर ऊपर निषेक बनेंगे तो आबाधा से हीन कर्म स्थिति इतने कर्म निषेक बनते हैं। कल देखा था ना, हर जगह ऐसा ही देखा था। आयुक्त में ही वो अलग जुदा है, बाकी सब में ऐसा ही है। यहाँ पर अर्थात कल करेंगे, ठीक है, मैथ्स आएगा। अच्छा ठीक है, 173 पेज से कल देखेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकन सदा देता हूँ।